आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दो दिवसीय उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 4,543 पदों के लिए 1,090 केंद्रों पर हुई परीक्षा। मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को दिए निर्देश, किसी भी व्यक्ति जाति पंथ की मर्यादा और आस्था के बारे में ना हो अमर्यादित टिप्पणी। केंद्र सरकार ने पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का दिया निर्देश। प्रदेश में एलपीजी पेट्रोल और डीजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी जारी। और प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में आज तेज हवा के साथ हुई बारिश, मुख्यमंत्री ने फसलों की क्षति का आकलन कर मुआवजा देने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का दूसरा चरण आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रशासन की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का दूसरा और अंतिम चरण आज पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित यह परीक्षा राज्य के 75 जिलों में दो पालियों में हुई। भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में उपनिरीक्षक के 4,543 पदों के लिए 1,090 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। केंद्रों की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग के लिए त्रिस्तरीय कंट्रोल और कमांड सेंटर की व्यवस्था की गई थी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम।
उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र संबंधी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। श्री योगी ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन को निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति जाति और पंथ और संप्रदाय की मर्यादा और आस्था के बारे में अमर्यादित टिप्पणी न हो। उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए सभी पेपर सेंटर्स को भी निर्देशित करें और हैबिचुअल ऑफेंडर्स पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए। वहीं इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कड़ी आपत्ति जताई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इसे अनुचित और आपत्तिजनक बताया और कहा कि ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास है। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस कृत्य को मानसिक विकृति से ग्रस्त पेपर सेंटर की जानबूझकर की गई हरकत बताया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी दोनों के कनेक्शन वाले परिवारों को तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या सरकारी तेल कंपनियों या उनके अधिकृत वितरकों से एलपीजी सिलेंडर रिफिल लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को भी अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल सरेंडर करना होगा। सरकार ने कहा कि ये कदम खाना पकाने की गैस की आपूर्ति में दोहराव को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि किसी भी खुदरा दुकान या वितरक के पास एलपीजी की कोई कमी नहीं है और डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संयुक्त सचिव ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडर की जल्दबाजी में बुकिंग नहीं करने और आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल बुकिंग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों के लिए व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं।
कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए, इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं।
प्रदेश में आम नागरिकों को एलपीजी पेट्रोल और डीजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी के साथ साथ निरीक्षण और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि आपूर्ति पर विशेष निगरानी के साथ साथ प्रशासन ने होम डिलीवरी पर भी फोकस रखा है।
प्रयास हो रहा है कि होम डिलीवरी पर फोकस किया जाए, क्योंकि जब किसी डिलीवरी पॉइंट से या लोगों की भीड़ में रहता है तो उसमें जो हमारे एक्चुअल कस्टमर होते हैं और उस समय काफी दबाव रहता है, तो उसमें हो सकता है कि जिनको बुकिंग हो गई हो जिनको वो भी लेने के प्रयास में इसलिए भीड़ लगती है। इस दृष्टि से यह प्रयास किया गया है कि एक दो दिन में होम डिलीवरी कराकर इस पर पूरी तरह से नियंत्रण कराया जाए।
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। यहाँ वक्त है एक अल्प विराम का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महान बलिदान का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सुरक्षित राज्य बन चुका है।
उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपनी स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती है। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। यह जौहर श्रद्धांजलि समारोह उसका एक प्रतीक है और उसका आह्वान भी कर रहा है, यह हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के दिन आमंत्रित अतिथियों को विशेष पास जारी किए जाएंगे।
प्रवेश पत्र पर प्रत्येक व्यक्ति का कोड नंबर लिखा मिलेगा। ये प्रवेश पत्र ट्रांसफरेबल नहीं है, सभी पर नाम भी होगा। मोबाइल फोन के साथ राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई सुरक्षा कर्मी है वो परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई बंदूक लाइसेंस की है तो भी वो लेकर परिसर में नहीं आ पाएंगे। जो सिख बंधु कानूनन जिनको एक छोटी सी कृपाण की अनुमति है केवल वही गले में रह पाएगी, वह भी सिख समाज के अगर बंधु है तो। कौन से से किसको प्रवेश करना है ये एक दो दिन के पश्चात सभी को बताया जाए।
चुनाव आयोग ने आज असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक चरण में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। नई दिल्ली में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होगा, तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा, पश्चिम बंगाल में मतदान अगले महीने की 23 और 29 तारीख को होगा। इन राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई को होगी। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में आज हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लखनऊ, बरेली, अमरोहा, हापुड़, एटा, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती समेत क्षेत्रों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने आज और कल अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, शामली, सहारनपुर समेत आसपास के अन्य जनपदों में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हुई वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी ली। श्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को फील्ड में रहकर किसानों से संवाद करने और उनकी फसलों के नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। साथ ही फसलों को होने वाली नुकसान का आकलन कर समय से मुआवजा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 2 दिवसीय उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 4,543 पदों के लिए 1,090 केंद्रों पर हुई परीक्षा। मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को दिए निर्देश, किसी भी व्यक्ति जाति पंथ की मर्यादा और आस्था के बारे में ना हो अमर्यादित टिप्पणी। केंद्र सरकार ने पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का दिया निर्देश। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल आपूर्ति पर लगातार निगरानी जारी। और प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में आज तेज हवा के साथ हुई बारिश। मुख्यमंत्री ने फसलों की क्षति का आकलन कर मुआवजा देने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।